समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नई रौनक उषा के साथ आई, नए विश्वास की सौगात आई, नया उत्साह है ठंडी हवा में, नई आशा अचानक हाथ आई। गगन के फिर सुनहरे शिखर छूने चले खग छोड़कर अपना बसेरा, उगा है रोशनी का गोल घेरा, गगन में फिर उतर आया सवेरा। नमस्कार, युगेंद्र दत्त शर्मा की इन पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन कार्यक्रम आज सवेरे में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
हेलो प्रियंका, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। एंड यस, डू यू इवन रिमेम्बर वेयर योर ग्लव्स आर, बिकॉज इट इज टाइम फाइनली।
आज सुबह सुबह जब निकल रहे थे तो वाकई में लगा भाई अब कुछ आपको स्वेटर या हल्की फुल्की शॉल निकाल लेनी चाहिए क्योंकि ठंड दस्तक दे चुकी है।
एग्जैक्टली, सो इफ यू हैवंट ऑलरेडी जस्ट एटलीस्ट जस्ट स्टार्ट राइट। एंड लिसनर्स, इन आवर प्रोग्राम आज सवेरे, वेल फर्स्ट we'll give you national and international news. Secondly, we'll update you with all the metro city updates and the historical information which is related to today. And today, listeners, it's 8th of November. First, let's begin with the headlines.
जी हाँ, सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के आज उत्तर प्रदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्ग पर चलेंगी। ये रेलगाड़ियां यात्रा के समय को कम करेंगी, पर्यटन को बढ़ावा देंगी और देश भर में आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करेंगी।
President Draupadi Murmu will embark on a state visit to Angola and Botswana beginning today. This is the first ever visit by an Indian head of state to these two African nations. During her visit, scheduled from the 8th of November to the 13th of this month, President Murmu will hold bilateral talks with her counterparts, address the parliaments and interact with Indian community in the two African countries. She will also attend the 50th anniversary celebrations of independence of Angola on 11th of November. During her visit, several other dignitaries are expected to call on the Indian president. The visit will focus on reviewing existing bilateral ties and exploring opportunities for collaboration in new areas. Discussions will prioritize sectors such as trade diversification, infrastructure, health and people-to-people relations. Project Cheetah will be a key topic of discussion with Botswana. President Draupadi Murmu's state visit to Angola and Botswana underscores the importance of India places on deepening its engagement with Africa and strengthening partnerships with nations of the Global South. Our correspondent covering the president's visit has more details.
India's engagement with Africa in the recent years has seen rapid expansion. Partnership also aligns with Africa's own vision for development. When Prime Minister Narendra Modi addressed the Ugandan parliament in 2018, he underscored the collaborative approach of Indian diplomacy in this region.
Our development partnership will be guided by your priority. It will be on terms that will be comfortable for you.
With 17 new missions opened in the recent years and trade nearing $100 billion, the partnership continues to gain momentum. 3 million strong Indian diaspora provide cultural and economic linkages with the region, including African Union in G20, reflected India's priorities towards engagement with the continent. President Draupadi Murmu's visit to Angola and Botswana is only a continuation of that enduring engagement. Manish Shiva, Akashwani News.
शगुन, आपको पता है मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
That is so great.
जी हाँ, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में एक सम्मेलन में कहा कि वर्तमान भूमिगत पाइपलाइन कनेक्टिविटी परियोजना के पूरे होने के बाद भारत अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि सरकार यातायात की चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली के भीड़भाड़ वाले में पॉड टैक्सी, एयर टैक्सी और रोपवे परिवहन प्रणाली शुरू करने पर काम कर रही है। तो कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इसको मैच किया जा रहा है।
द पैसेंजर्स विल बी बेनिफिटेड
जी, राइट। और ऐसे कई मामले आते हैं शगुन, जैसे जब विदेश जाने और बसने के जो अति उत्साही लोग हैं ना, अक्सर ऐसे अवैध एजेंट्स के झांसे में फंस जाते हैं, जो उन्हें विदेशों में नौकरियां दिलाने या बड़े बड़े सपने दिखाकर ना झूठा वायदा करते हैं और गैर कानूनी कामों में, गलत कामों में लगा देते हैं। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवासी महासंरक्षक सुरेंद्र भगत ने पंजाब और देश के युवाओं से अवैध रूप से विदेश जाने के बजाय कानूनी तरीके अपनाने का आह्वान किया है। जालंधर में सुरक्षित और कानूनी आवागमन पर जागरूकता कार्यक्रम में श्री भगत ने कहा कि विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को ट्रैवल एजेंट की विश्वसनीयता की जांच अवश्य करनी चाहिए। और इस अवसर पर उन्होंने हैशटैग विदेश रोजगार साथी लॉन्च किया। इसके अलावा सीबीसी के सहायक निदेशक यशुदीप सिंह ने युवाओं से विदेश जाने के लिए आवश्यक सभी विवरण को जानने में विभाग की वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर जाने और प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र के व्हाट्सएप नंबर 7428321144 का उपयोग करने को कहा है।
प्लीज नोट दैट लिसनर्स। And Priyanka, well, if we talk about our national song, Vande Mataram, a song that has inspired generations of Indians to unite, also to rise and celebrate the spirit of the nation. And the country is celebrating the 150th anniversary of national song Vande Mataram. So today, our correspondent brings a report on the man behind the immortal words of Vande Mataram.
The national song Vande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee, one of India's foremost literary figures and a pioneer of modern Indian literature. Born in 1838 in the Bengal region, Bankim Chandra combined the vision of a reformer with the power of his pen and imagination. Marking the beginning of a new era in Indian fiction, he wrote his first Bengali novel Durgesh Nandini in 1865. It was in his celebrated novel Anand Math that the patriotic hymn Vande Mataram first appeared. The poem was first published in his literary journal Banga Darshan in a serialized form and later included in the complete edition of Anand Math in 1882. The song celebrates the motherland as the embodiment of strength, prosperity, and divinity, and gives poetic voice to India's awakening spirit of unity and self-respect. With Vande Mataram, Bankim Chandra Chatterjee's legacy continues to echo through the corridors of India's freedom story. With Shivang and Soumya, this is Saira Mujtaba for Akashvani News. Vande Mataram.
ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा है, सुनने के बाद आज भी देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हो जाती है हम में। और उस समय भी जब विद्रोह जब उठा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो स्वतंत्रता सेनानियों को इस गीत ने प्रज्वलित किया और आगे मतलब उनकी लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक ये गीत उनकी जुबान पर रहा।
यस प्रियंका, इट फिल्स अस विद प्राइड एवरी टाइम वी लिसन टू इट।
जी हाँ, और आपको बताएं कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष आज भूटान भेजे जा रहे हैं। 11 दिन की प्रदर्शनी के दौरान ये जनता को दिखाए जाएंगे। ये पवित्र अवशेष नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर भूटान जा रहे प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि ये अभियान थिम्पू में वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव का अंग है। ये ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंह ने वांगचू की 70वीं जयंती मनाई जा रही है।
Now let's Priyanka stretch our boundaries a little. Let me tell our listeners that Denmark has announced plans to ban social media use for children under the age of 15, and there will be exceptions. And for those aged 13 to 14, subject to parental approval. The move is aimed at protecting the mental health of young people and is expected to receive broad political support in the parliament. Digitalization Minister Caroline Stage Olsen stated that social media is detrimental to children's time and well-being. So popular platforms among Danish children, they include Snapchat, YouTube, Instagram and TikTok, with children spending an average of 2 hours and 40 minutes daily online. So a ban has been imposed.
आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कल लोक प्रसारण में अद्वितीय योगदान के लिए आकाशवाणी कोहिमा की सराहना की। नागालैंड दौरे के दूसरे दिन कर्मचारियों के साथ बातचीत में श्री जैन ने कहा कि ये स्टेशन देश के उन गिने चुने केंद्रों में से एक है जो नियमित रूप से विभिन्न बोलियों में समाचार और कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तब आकाशवाणी का सोचिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ मंत्र के साथ काम कर रहा है और इसकी जो रीच है 99.1 जो परसेंट आबादी हमारे देश की उस तक है।
यस, इट रीचेस टू द बाउंड्रीज एंड सो मेनी पीपल एवरी डे। नाउ लेट्स टेल आवर लिसनर्स, लेट्स गिव देम द स्पोर्ट्स अपडेट। इन मेंस क्रिकेट, इंडिया विल टेक ऑन होस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल गेम ऑफ द 5-match T20 सीरीज एट गैबा इन ब्रिस्बेन टुडे। द मैच इज शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 1:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो द मेन इन ब्लू डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 48 रन्स इन द फोर्थ मैच एट करारा ओवल इन क्वींसलैंड। दिस हैपेंड ऑन थर्सडे एंड देन दे टुक अ 2-1 लीड इन द सीरीज। Surya Kumar Yadav and all the team members, they will aim to finish the series on a high.
और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरें जानने का।
Yes, and Priyanka, we will begin with Chennai first. The Consul General of France in Puducherry and Chennai, Etienne Roland, the peak, conferred the insignia of Chevalier d'Or, Knight in the Order of Academic Palms, on Associate Professor and Head of the Department of French at Ithiraj College for Women, Chennai, Dr. Adeline G. Albert. So this was conferred Knight in the Order of Academic Palms. She was nominated to the rank of Chevalier in recognition of her contribution to the promotion of the French language, which is very popular in Puducherry, if I talk about that, and the culture, French culture in India, and a role as an academician in bridge builder and between India and the Francophone world. Dr. Adeline is a specialist in French language and also the comparative literature. She has also authored textbooks and numerous research publications there. Now we are heading to Bengaluru. The Raman Research Institute in Bengaluru celebrated 137th birth anniversary of Sir C.V. Raman, the Nobel Prize winning physicist. The institute celebrates his birthday or as its Founder's Day. So on this occasion, Dr. Ajay Chaudhary, the co-founder of HCL and chairman of the Mission Governing Board of the National Quantum Mission, delivered a lecture on sovereignty through science and technology. He stressed on the need for India to move from a service-based economy to a product-based economy. So this happened in Bengaluru. Now, listeners, let's focus on Telangana, Hyderabad. In Telangana, the private professional colleges have called off their band and all protests scheduled this month after talks with the government. These colleges have closed down for 5 days over tuition fee reimbursement dues from the state government and scheduled protests during the month. The Federation of Association of Telangana Higher Education Institutions, the representatives held talks with Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka and Minister K. Venkat Reddy over release of total dues to a tune of 1,500 crore rupees. These were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Now over to you, Priyanka.
जी हाँ, सबसे पहले दिल्ली की खबरें जानते हैं। देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल अफरा तफरी मच गई क्योंकि हवाई यातायात नियंत्रण ATC प्रणाली में तकनीकी समस्या के कारण 800 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई। बाद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस समस्या का समाधान कर दिया। प्राधिकरण ने कहा कि कुछ लंबित उड़ानों के कारण स्वचालित संचालन के सामान्य संचालन में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के लिए कल स्कूल वेब ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ेगा और इस ऐप के माध्यम से टाइम टेबल, होमवर्क, नोट्स, अटेंडेंस और रिजल्ट जैसी जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी है अब घर बैठे उपलब्ध होगी। तो ये देखिए, अभिभावकों के लिए कितना अच्छा है कि बच्चों की जो शैक्षणिक प्रगति है उससे निरंतर जुड़े रहेंगे, उनको ये अवसर मिलेगा और विद्यालय तथा अभिभावक के बीच भी संवाद और मजबूत होगा। तो अब जो 2 महीने से जू नहीं जा पाए हैं, बच्चों को दिखाने के इच्छुक हों और नहीं दिखा पाए, तो आपको बता दें कि जो दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान आज से लोगों के लिए फिर खुल रहा है। एक बाड़े में इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के कारण इसे 2 महीने के लिए बंद करना पड़ा था। एक अधिकारी ने बताया कि इसे फिर से खोलने के बाद सामान्य सुरक्षा और एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा। अब मुंबई की खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने जिला परिषद विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों को केंद्र प्रमुख या समूह संसाधन केंद्र समन्वयक के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा जो पहले इस वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक निर्धारित थी, अब जनवरी या फरवरी अगले साल में आयोजित की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। परिषद ने कहा है कि शिक्षकों की पात्रता और अनुभव पर उसी तिथि से विचार किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम का विवरण परिषद की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। कोलकाता का रुख करें तो 31वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF कोलकाता में जारी है। इस वर्ष थीम देश पोलैंड है। कल नंदन फिल्म और सांस्कृतिक केंद्र में द सबाल्टर्न वॉइस नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये महोत्सव 13 नवंबर को समाप्त होगा। और अब जानते हैं आज का मौसम महानगरों में कैसा रहने वाला है।
We were talking about it in the beginning as well. When we were talking about Delhi specifically, let's tell our listeners about Chennai. It is expected to have partly cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru, if I talk about Bengaluru, it is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky again with haze. The temperature will be, minimum temperature will be 19 degrees Celsius and maximum temperature will be 31 degrees Celsius there, Priyanka.
और दिल्ली का मौसम बताएं तो दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा और सुबह सुबह था भी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और मेरा क्राइटेरिया क्या है शगुन, जब ठंड आ जाए कि जो आपकी तेल की शीशी की बॉटल होती है वो जमने लग जाए
जी,
तो वो कल मैंने देखा कि वो जमनी शुरू हो गई, इसका मतलब ठंड आ गई है। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा। कोलकाता में भी मौसम साफ रहेगा। मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, अधिकतम 31 डिग्री और कोलकाता में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चलते हैं इतिहास में और जानते हैं कि 8 नवंबर को आज के दिन क्या खास रहा। इतिहास के पन्नों में टटोलते हैं। 1895 में आज ही के दिन जर्मन भौतिक शास्त्री विल्हेम रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस दिन को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
यस प्रियंका, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे It is being observed today globally, and this day it aims to raise awareness of the vital role of radiographers and diagnostic imaging in healthcare. Of course, it has benefited everybody a lot worldwide. And on this day, as you were telling, in 1895, Wilhelm C. Röntgen discovered the X-rays. He helped save millions of lives and then subsequently won a Nobel Prize. So, Priyanka, X-ray imaging and guided interventions, they also played a key role if we go little back during the COVID-19 pandemic.
बिल्कुल, और अगर आप देखें तो एक्सरे का तो हमें कितना फायदा होता है, किसे कुछ फ्रैक्चर हो उसका पता लगाने, निमोनिया ट्यूमर जैसी बीमारियों का निदान करने, शरीर में मतलब कुछ चला गया है तो उसके बारे में पता लगाने, तो बहुत फायदे हैं क्योंकि इसमें आपको दर्द नहीं होता, सुरक्षित होता है और सटीक जानकारी मिलती है।
ऑन डेली बेसिस राइट, सो मेनी ऑफ एक्सरेज दे वुड बी हैपनिंग इवन राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग। So now let's take you back in the year 1990. Mary Robinson was declared President-elect of Ireland, serving from 1990 to 1997. Mary Robinson, she was first female president of Ireland.
2008 में आज ही के दिन भारत का पहला चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ। इसे चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भेजा गया था और महज 386 करोड़ रुपए की लागत वाला ये मिशन 300 12 दिन चला और इस दौरान 95% लक्ष्यों को पूरा किया गया।
312 days.
जी हाँ, और इसके बाद तो हमने जरा से एक नए युग का कीर्तिमान हम लोग स्थापित कर ही रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जैसे हमने चंद्रयान 2 भेजा जो पूरी तरह से हालांकि सफल नहीं रहा, फिर चंद्रयान 3 में हमने विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई और इतिहास रच दिया देश, क्योंकि दुनिया का पहला देश बन गया ऐसे करने वाला। और अब हम चंद्रयान 4 पर भी काम कर रहे हैं जो उसको जल्द भेजा जाएगा, और जो उसका पता मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि चंद्रमा से नमूने एकत्र करके उसको पृथ्वी पर लाना है।
Wow, how wonderful. And also Priyanka, the Chandrayaan 1 mission completed the lunar orbit insertion operation and then the satellite was injected into lunar orbit, and I believe this will keep happening and even more such missions, they will keep taking place and will achieve that those heights as well. In 2016, Prime Minister Narendra Modi announced the demonetization of 500 rupees and 1,000 rupees banknotes in an effort to combat black money, also counterfeit currency and terrorism financing then.
और क्रिकेट जगत के लिए 8 नवंबर का दिन बेहद खास रहा है। इसी दिन साल 1999 में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने 331 रन की साझेदारी करते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया था। न्यूजीलैंड के साथ ये मैच हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सौरव गांगुली 4 रन पर आउट हो गए। यहां से सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ के साथ मोर्चा संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 331 रन की साझेदारी करते हुए इतिहास रच दिया, और इसमें हमने न्यूजीलैंड से मैच जीता भी था।
Yes, and both of them, they remain unbeaten, right? Tendulkar remain unbeaten in the match with a score of 186.
और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की। लोचन प्रसाद पांडे की रचनाओं में स्वर्णिम अतीत की सुखद स्मृतियों और दुखद वर्तमान परिस्थितियों की दारुण पीड़ाओं के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की चाह, आधुनिक शिक्षा के प्रसार की ललक, स्वदेशी के प्रति आग्रह, नैतिकता, स्वावलंबन जैसी प्रवृत्तियां परिलक्षित हैं। वे भारतेंदु साहित्य समिति के भी सदस्य थे और 1923 में लोचन प्रसाद जी ने छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की थी। उनकी रचनाओं की बात करें तो उसमें दो मित्र, प्रवासी, कविता कुसुम शामिल हैं।
And now, Priyanka, let me also tell our listeners about Marathi author, playwright and screenplay writer, also film director and actor, singer, music composer as well. I am talking about Purushottam Lakshman Pandey. So, if you ask any Marathi reader who is familiar with his work, they'll tell you that the man was a master at capturing aspects of life unique to Maharashtra, be it the chore life of Mumbai or his take on Mumbaikars, Punekars, Nagpurkars, an essay that beautifully dissects the Maharashtrian identity. And I will quote him now. He said, I don't think I can write an autobiography. Some of the stories that I write, they represent my life, while others are part of my imagination, unquote. I was quoting him. Purushottam Lakshman Deshpande.
और प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी की आज जयंती है, और मात्र 16 साल की उम्र में उनका नृत्य देखकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें कथक क्वीन यानी नृत्य सम्राज्ञी के खिताब से सम्मानित किया था। सितारा देवी न सिर्फ कथक बल्कि भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और लोक नृत्यों में पारंगत थीं। उन्होंने रूसी बैले और पश्चिम के कुछ और नृत्य भी सीखे। जब वे महज 12 वर्ष की थी तो फिल्म निर्देशक निरंजन शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म उषा हरण में अभिनय का प्रस्ताव दिया था। हालांकि वे फिल्म पूरी होने में 7 साल लग गए, पर सितारा की प्रतिभा किसी से छिपी नहीं रही और अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने कई और फिल्मों के ऑफर मिल गए, और अगले 2 वर्षों में वे वसंत सेना, अनोखी मोहब्बत, शहर का जादू जैसी फिल्मों में दिखी और उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया और गीत भी गाए। चेतन आनंद की फिल्म अंजलि में प्रसिद्ध नागिन नृत्य किया और महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया आपको याद होगी और उसमें होली गीत में लड़के के भेष में उन्होंने नृत्य किया था। आप ये गीत सुनिए और उसकी शुरू की थाप में लड़के के भेष में जो सितारा देवी ने नृत्य किया था वो आज भी मंत्र मुग्ध कर देता है।
hey!
Listeners, today we are also remembering Clara Ann Fowler. Well, Patty Page, she is known by her stage name. So, primarily, she is known for pop and country music, and she was the top charting female vocalist, Priyanka, and best female artist, best-selling female artist of the 1950s. And it's whopping. She has sold over 100 million records during a six-decade-long career. And she was often introduced as the singing rage Miss Patty Page. That's the way she was introduced. And the song that you're listening, this is Tennessee Waltz. Let's listen into that.
Introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart.
And it's also interesting to note, Priyanka, in 1997, she was inducted into the Oklahoma Hall Music Hall of Fame. And then she was posthumously honored with the Lifetime Achievement Grammy Award in 2013.
जी हाँ, अब एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कहा था कि फिल्मों का कोई उद्देश्य होना चाहिए और उसमें संदेश भी होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो फिल्म बनाने का कोई औचित्य नहीं है. ऐसा मानना था तेलुगु सिनेमा के महान फिल्म निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी यानी बीएन रेड्डी की का, और उनकी आज पुण्यतिथि है. वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि एक एक चीज का ध्यान रखते थे. अगर एक उदाहरण लें तो फिल्म पूजा फलम के लिए उन्होंने उस समय 2000 का नेकलेस खरीदा था, क्योंकि निर्माता जो हार लेकर आए थे उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे बदलवा दिया, जबकि ये काम उनका नहीं था. उन्हें कभी इसकी परवाह नहीं रही कि फिल्मों ने कितना पैसा कमाया. उनकी क्लासिक या कहीं तेलुगु सिनेमा की क्लासिक फिल्म थी मल्लेश्वरी. तेलुगु भाषा की ये पहली फिल्म थी जिसे किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया. अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी मांगी थी ताकि उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके. और जी हाँ, और आपको इसी फिल्म का ये बहुत ही सुंदर गीत सुनाते हैं. बीएन रेड्डी दक्षिण भारत की पहली हस्ती थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
And it is listeners today, LK Advani's birthday. So Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings to veteran BJP leader LK Advani on his birthday today. He prayed for Mr. Advani's good health and a long life. So in a social media post, Mr. Modi described him as a statesman blessed with towering vision and intellect whose life has been devoted to strengthening India's progress. And he also said that he has always embodied the spirit of selfless duty and steadfast principles. The Prime Minister added that Mr. Advani's contributions have left an indelible mark on India's democratic and cultural landscape. So, listeners, today we are also remembering another musician, Minnie Julia Rudolph, and she is a singer and songwriter best known for her single, this was Loving You. But the song that I have chosen, this is other one, this is Les Fleurs.
Will a lady pin me in her hair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a string?
और अब पॉप सिंगिंग को एक अलग पहचान देने वाली पॉप क्वीन उषा उत्थप का आज जन्मदिन है. उन्होंने अपने करियर में कई हिट्स दिए और ऐसा मतलब देखा जाए तो उनकी लुक्स को देख के, उनकी आवाज को देख के आज भी उनकी आवाज के सब दीवाने हो जाते हैं.
राइट प्रियंका,
और जाते जाते उन्हीं का गाया ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं.
मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी.
Well, we can listen to her deep contralto voice and her versatility across genres and also languages, and she has done beautiful, amazing work.
जी हाँ, और इस थिरकते हुए गीत के साथ आपको आपने गीत ने आपको जगा दिया होगा और जग जाइए, सवेरा हो चुका है और हमें दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने का. तो शगुन और प्रियंका आपसे इजाजत चाहते हैं. नमस्कार.